अय्यूब अध्याय नौ, अध्याय नौ पद एक और दो। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है। क्या यह सच है कि परमेश्वर न्यायी है? यह एक ऐसी बात है जो हम सबको समझना है। यह सच है कि परमेश्वर न्याय में उचित है, वो न्यायी है। जबकि लोग परमेश्वर के न्याय पर उंगली उठाते हैं, शैतान ने हव्वा के सामने जो दोष लगाया था वो ये था कि परमेश्वर पक्षपात करता है। परमेश्वर नहीं चाहता था वे उस पेड़ का फल खाकर उसके तुल्य बुद्धिमान बन जाए। मैं लोगों को कहते सुना है, एक प्रेम करने वाला परमेश्वर किसी को नरक कैसे भेज सकता है? एक प्रेमी परमेश्वर भूख से मरते हुए बच्चों को कैसे देख सकता है? एक प्रेमी परमेश्वर कैसे सहन कर सकता है कि लोग युद्ध में विकलांग हो जाएं? इन प्रश्नों का अर्थ वास्तव में ये निकलता है कि परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है। परमेश्वर मुझे ऐसी स्थिति से क्यों निकलने नहीं देता है? निश्चय ही परमेश्वर, तू मेरे साथ अन्याय कर रहा है। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि जो तू कहता है वो सच है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर निष्पक्ष है। मैं परमेश्वर को जानता हूं। आपको ये जान लेना उचित है, क्योंकि बहुत से विषय ऐसे होंगे जिन्हें आप नहीं समझते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को नरक का भागी कैसे बना सकता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी सुना ही नहीं? क्योंकि उसका पालन पोषण ऐसे स्थान में हुआ है, वहां पर सुसमाचार पहुंचा ही नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा मनुष्य नरक में डाला जाएगा। हां, पवित्र शास्त्र में यह अवश्य लिखा है कि जब वो न्याय करेगा तब वो पक्षपात नहीं करेगा। तब वो क्या करेगा ये मैं नहीं जानता, परंतु जब वो न्याय करेगा और मैं उसके न्याय को देखूंगा, तब मेरे मुंह से एक ही बात निकलेगी, बिल्कुल ठीक, उसका न्याय निष्पक्ष है। यद्यपि बैरी परमेश्वर के न्याय पर सदैव उंगली उठाता है, अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि जो तू कह रहा है वो सही है, परंतु मेरी समस्या ये नहीं है। मेरी समस्या तो ये है कि मैं अपनी याचना को लेकर परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हूं। मैं अपनी स्थिति को उसके सामने कैसे रखूं कि न्याय पाऊं? परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, उसकी बुद्धि महान है। यदि वो मुझसे प्रश्न करने लगा तो मैं उसके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। परमेश्वर असीम है और मैं नगण्य। मैं इस पृथ्वी की धूल का एक कण हूं, अतः मैं उस परमेश्वर के सामने कैसे उपस्थित होने की आशा करूं कि उससे कहूं, प्रभु तू ऐसा क्यों करता है? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो उस तथ्य को स्वीकार करता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और परमेश्वर चाहे तो पहाड़ों को हटा सकता है। परमेश्वर एक मिनट में इतना मलबा निकाल सकता है जितना मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने सब आधुनिक साधनों द्वारा एक साल में भी निकाल नहीं पाएगा। इसका उदाहरण अमेरिका का माउंट सेंट हेलेन ज्वालामुखी है। वो पृथ्वी के नेव को हिला सकता है। उसने सितारों को स्थिर किया हुआ है। उसने आकाश को अपने हाथों से थान रखा है। मैं क्या हूं जो ऐसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाऊं? मैं उसे देख भी नहीं पाता जबकि वो मेरे चारों ओर है। मैं उसे छू नहीं पाता। जब मैं इसकी ओर बढ़ता हूं तो पाता हूं कि वो वहां नहीं है। मनुष्य कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपनी याचना रखे? तू तो मुझसे कहता है कि परमेश्वर के सामने अपना लेखा साफ कर ले, परंतु मैं उसके सामने कैसे जाऊं? मैं मानता हूं जो तू कहता है कि परमेश्वर न्यायी है, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा है कि उस अनंत परमेश्वर की महानता और व्यापकता के सामने कैसे पहुंचूं, क्योंकि हम में और उसमें दूरी है। आठवें भजन में दाऊद ने भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना किया, यद्यपि इसके दृष्टिकोण कुछ फर्क था। वो आकाश का संदर्भ देता है, भजन संहिता 8:3-4। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू इसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। उसने आकाश और मनुष्य की तुलना करके देखा कि वो महान दूरी है। आयुब नीचे खड़े होकर उस दूरी का अनुभव कर रहा है। जब मैं स्वयं को देखता हूं तो मैं क्या हूं कि परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाऊं, या अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करूं कि मैं परमेश्वर से कहूं कि मैं धर्मी हूं। अध्याय 8:19-22 तक। जो सामर्थ की चर्चा हो तो देखो वो बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वो कहेगा मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहराऊंगा। खरा होने पर भी वो मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है, इससे मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। कहने का अर्थ यह है कि भला होने के कारण मैं समस्याओं से सुरक्षित रहूं, ये संभव नहीं। परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों का नाश करता है। तू मेरी बातों का खंडन करेगा, परंतु मैं कहता रहूंगा। तब वो अपने दोस्तों के बारे में कहता है, अध्याय 9:30-31। चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा, और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेगा। मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो अपने मुंह से कह नहीं सकता कि मैं धर्मी हूं या निर्दोष हूं। मैं यदि अपना शोधन भी करके आ जाऊं तो भी तुम लोग मुझ पर लांछन लगाओगे। तब वो परमेश्वर के बारे में कहता है, अध्याय 9:32, क्योंकि वो मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है। ये हमेशा याद रखें, हम कितनी बार परमेश्वर को अपने स्तर तक गिरा देते हैं। हम सदैव उनके वर्ग में आ जाते हैं जिनका उल्लेख रोमियो के अध्याय 1 में किया गया है। पौलुस लिखता है, रोमियो अध्याय 1:18-25 के कुछ पदों में, पद 18, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं। पद 21-22, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। पद 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सर्वदा धन्य है। देखिए, उन्होंने परमेश्वर को मनुष्य के स्तर तक गिराया, उन्होंने उसे परमेश्वर की सी महिमा नहीं दी। यदि मैं परमेश्वर को निर्देश दूं तो इसका अर्थ यही है कि मैं उसकी महिमा नहीं करता। मैं उससे कहूं कि मैं यीशु के नाम में मांगता हूं ये कर, तो ये उसकी महिमा नहीं है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि परमेश्वर का स्तर आपसे भी नीचे है। ये तो अलादीन का चिराग वाली बात है। परमेश्वर कोई जिन नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य ये भी नहीं कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो तो मुझसे कहीं अधिक जानता है, अतः उचित प्रार्थना यह है, हे पिता, मेरे जीवन की सब परिस्थितियों में तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जब प्रार्थना नहीं कर पाता हूं तब मुझे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश समय मैं प्रार्थना करना ही नहीं जानता। मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता तब मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता हूं, और मैं कहता हूं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जानता हूं यही सर्वोत्तम प्रार्थना है। मुझे परमेश्वर पर ऐसा विश्वास है क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मुझसे अति महान है। आप उसकी बुद्धि से अपनी तुलना नहीं कर सकते। वो असीमित है और आप एक सीमित मानव। यहां तो तुलना का प्रश्न भी नहीं आता। ठीक है, तू मुझसे कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करूं। तेरी राय के लिए धन्यवाद। मेरे लिए अपना पक्ष रखने का समय परमेश्वर से कौन लेगा? दूसरी ओर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? यदि वो मुझसे प्रश्न करना आरंभ कर देगा तो मैं तो उसका एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, और मुझे अविश्वसनीय घोषित करके वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो तो मनुष्य के तुल्य नहीं कि कोई उससे प्रश्न करे। अध्याय 9 पद 33। हम दोनों के बीच कोई बिछवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखें। मेरी स्थिति तो बड़ी निराशाजनक है। मैं उसके निकट ही नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि वो है। मैं ये भी जानता हूं कि वो निष्पक्ष है, परंतु उसके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई रास्ता ही नहीं। मैं तो केवल एक तुच्छ मनुष्य हूं और वो असीम परमेश्वर है। अब ये तो तभी हो सकता है जब हमारे बीच में कोई बिछवाई हो जो दोनों से संपर्क कर सके, परंतु ऐसा कोई है ही नहीं। मैं नए नियम के प्रकाशन के लिए परमेश्वर का कितना आभारी हूं। पौलुस कहता है, पहला तिमोथियुस 2:5, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, ये है मसीह यीशु। फिलिप्पियों 2:6-7, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो एक तरफ परमेश्वर को छू सकता है और दूसरी तरफ मुझे छू सकता है। उसने मनुष्य रूप में परीक्षाओं का सामना किया कि जब मैं परीक्षा में पढ़ूं तो वो मेरी सहायता कर पाए। यूहन्ना 1:14, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पद 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में लिखता है, 1 यूहन्ना 1:3, जो आदि से था, जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। पद 3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। आयुब ने कहा, वो उसके पास ही है परंतु वो उसे देख नहीं पा रहा था। यूहन्ना कहता है, मैंने उसे देखा जो आदि से था। आयुब ने कहा, वो उसे छू नहीं पाया था। यूहन्ना ने कहा, उसने उसे छुआ। यद्यपि मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने के लिए गुम्मट बनाने में सफल नहीं हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाया जो उसकी दया का परिणाम था। अन्य किसी धर्म में और मसीही विश्वास में यही एक बड़ा अंतर है। अन्य धर्मों में मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजता है, वो उसे खोजता है, वो उसका स्पर्श करना चाहता है, परंतु मसीही विश्वास में परमेश्वर मनुष्य के पास आता है। यही कारण है कि मसीही विश्वास में तर्क है, क्योंकि हम सीमित मनुष्य कैसे एक असीम परमेश्वर को पा सकते हैं, जबकि असीम परमेश्वर द्वारा हम सीमित मनुष्य को पा लेना ही तर्कपूर्ण है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर खाई को भर दिया। आयुब ने परमेश्वर को पुकारा। जब मनुष्य का सब कुछ नाश हो जाता है, तब उसकी एक ही आशा होती है कि वो परमेश्वर को पुकारे जो हरेक के दिल में वास करता है। सर हेनरी ड्रुमन ने अपनी पुस्तक द नेचर एंड द सुपरनेचुरल में लिखा है कि मनुष्य की कोशिका के जीव द्रव्य में ऐसे तंतु होते हैं जो परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। ये कोई सांसारिक आवश्यकता जैसे भोजन और अन्य मौलिक आवश्यकताओं की बात नहीं है। जब आप जीवन के आधारभूत विषयों पर आते हैं, तब मनुष्य की मूल आवश्यकता है परमेश्वर का स्पर्श करना। मैं उस तक कैसे पहुंचूं? मैं उसे कैसे जानूं? मैं उसका स्पर्श कैसे करूं? हमारे मध्य में ऐसा कोई नहीं है जो हमें स्पर्श करे। यही एक मार्ग है। ऐसा कौन है जो पिता के तुल्य हो, जो पिता को छूता हो और मुझे भी छूता हो? केवल मसीह का ही स्पर्श ऐसा है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के संपर्क में आ जाता हूं। वो मेरे गले में बाहें डाल देता है। यही वो मध्यस्थता है जो महिमा से पूर्ण है। इसी के द्वारा मेरे जीवन की मूल आवश्यकता पूरी होती है। मेरे भीतर की ये याचना भरी पुकार अब पूरी हुई। अब परमेश्वर का अनुभव मुझे प्राप्त होता है कि मैं उसे यीशु के द्वारा छू सकता हूं या उसने मुझे छुआ। ये यीशु का काम है। अब आप मुझे देखकर कहेंगे, हे दयनीय प्राणी, क्या तू सोचता है कि तूने परमेश्वर का स्पर्श किया है? आपको मुझ पर तरस आएगा, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इससे अधिक तरस उस मनुष्य पर आता है जो कहे कि उसने परमेश्वर का स्पर्श नहीं किया है। जो मनुष्य ये नहीं जानता कि जीवन पर परमेश्वर का स्पर्श क्या है, वो सहानुभूति और तरस का पात्र है। जिसने परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुनी, जिस मनुष्य ने परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास और आनंद का अनुभव न किया हो, ऐसे मनुष्य पर तरस खाओ, मुझ पर नहीं, मैं तो ठीक हूं।